ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधनाएं समयानुकूल और पात्रता के अनुकूल हुआ करते हैं। एक सीधी साधना कभी नहीं। और पुराने जमाने की साधना को हम उपक्रम देखते हैं तो कभी तप ही मुख्यता, पार्वती जी तप करके रहती थी, कितने वर्ष तक हवा पर रहीं, पत्ते खा के रहीं, पानी खा के रहीं, कभी तपस्या की साधना होती थी, कभी ज्ञान की साधना होती रहीं। सूत और सोनिक से निमशारण्य वगैरह क्षेत्रों में जाकर के कथा प्रसंग होते थे, अनेक भक्तजन आते थे और कथा श्रवण करते थे, सत्संग की बात करते थे, कभी शिक्षण का चला आरण्यक और ब्राह्मणों का, आरण्यक कभी स्थापित हुए और उनमें जाकर के लोग अपने ज्ञान अर्जन करने लगे। साधना उस समय उस तरह की थी, हजारों तरह की साधनाएं, कभी तांत्रिक साधनाएं, कभी कौन कौन कभी कौन, ऐसे समयानुसार होती रही हैं। काल के हिसाब से साधना का चयन करना गुरुजनों का काम और शिष्यों का काम। शिष्यों का काम यह है कि युग दृष्टा समय को जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति जिस तरह की साधना अपने लिए बता दें उसी को ठीक मान करके चलना चाहिए। आज का एक विशेष समय है, सामान्य समय नहीं है, युग संधि का समय है। युग संधि के समय को आप चाहें तो आपत्तकालीन समय कह सकते हैं। कभी कभी आपत्तकालीन समय आते हैं, जैसे भूकंप आ जाए कभी तो उसको आपत्तकालीन कहेंगे, मकान गिर पड़ेंगे, लोग भाग खड़े होंगे, कुछ मिट्टी के नीचे दब जाएंगे, हाहाकार हो जाएगा, बिजली चली जाएगी और नल पानी देना बंद कर देंगे, ऐसे समय को आपत्तकाल कहेंगे। दुर्भिक्षों को भी आपत्तकाल कहते हैं, जब खाना नहीं मिलता और अनाज पैदा होना बंद हो जाता है, कुएं का पानी सूख जाता है, जब आदमी अपनी जान बचाने के लिए या तो भाग खड़े होते हैं या वहीं का प्राण त्याग देते हैं। ये दुर्भिक्ष प्राचीन काल में बहुत थे, अब तो उतने नहीं है। अग्निकांड हो जाए, छप्पर जलने लगे किसी का, तब फिर आपको उसको आपत्तकाल कहेंगे। अपना जो नृत्य का काम है बंद कर दिए, अग्नि को बुझाने के लिए दौड़िए, खाना खा रहे हैं छोड़ दिए, पड़ोस में आग लग गई वहाँ जाइए, नहा रहे हैं नहाना बंद की, कपड़े धोने हैं तो काम जरूरी पर कपड़े को बंद कीजिए और जाइए पड़ोस में आग लग रही है उसको आप देखिए। दुकान जाने को थे ना, मत जाइए दुकान को, देखिए क्या दुर्घटना घटित हो गई। सामने वाले में बस का एक्सीडेंट हो गया, बस टक्कर में आ गई है, कितने आदमी की टांग टूट गई, कितने घायल हो गए, कितने मर गए, अब आप आज दुकान जाना बंद कर दीजिए। सामान्य समय के क्रम को आप बंद कर दीजिए और ये घायल जो पड़े हुए हैं इनको पानी पिलाइए, इसकी पट्टी का इंतजाम कीजिए, इनको अस्पताल भिजवाने की कोशिश कीजिए, अथवा जो भी सहायता उनकी उस समय आप कर सकते हो करें। आज आप दुकान बंद कर दें, क्यों दुकान का क्यों नुकसान कर दें, क्योंकि वो सामान्य समय की बात है। असामान्य समय में आदमियों को असामान्य कार्य पद्धति का निर्धारण करना पड़ता है। महामारियाँ फैल जाती हैं, बाढ़ आ जाती हैं, कोई और बड़ी दुर्घटना हो जाती हैं, तब लोग जो भावनाशील लोग हैं अपना सामान्य क्रम बदल देते हैं, बंद कर देते हैं और उन दुखी लोगों की सहायता करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये इसे क्या कहेंगे, आपत्ति धर्म कहेंगे, आपत्ति धर्म। आज का समय ऐसा ही आपत्ति काल है, उसमें आपत्ति धर्म निभाने के लिए आप सबको तैयार बनना चाहिए। आज का समय आप देखते हैं युग संधि का समय है। एक और कौरवों की सेना खड़ी हुई है और एक और पांडवों की सेना खड़ी हुई है, एक और विनाश मुबाए खड़ा हुआ है, असुरता मुबाए खड़ी हुई है, सर्वनाश की चुनौतियाँ एक पार्टी में खड़ी हुई हैं, दूसरी पार्टी में नया निर्माण करने के लिए युग शिल्पी अपनी अपनी तैयारी के साथ कमर बंध के खड़े हुए हैं। ये कौरव पांडवों की लड़ाई है, ये महाभारत का समय है, इसको आप आपत्तिकाल समझिए। आपत्तिकाल में सामान्य समय के जो बातें होती है वो इस समय नहीं हो सकेंगी, आपको इस समय के लिए विशेष धर्म अपना अपनाना चाहिए। अर्जुन कोई लड़ना झड़ने का पेशा थोड़ी करता था, जिंदगी भर कोई और काम करता रहा। गीता में जब भगवान ने कहा कि लड़ तो भी वो आना कहानी करने लगा, उन्होंने कहा अब लड़ने से क्या फायदा, लेकिन वो तो आपत्तिकाल था ना, अगर वहाँ लड़ाई नहीं लड़ी हुई होती तब कंस, दुर्योधन और दुशासन और ये शिशुपाल वगैरह मिलकर के यानी कैसा हाहाकार कर देते और लाखों करोड़ों आदमियों को तहस नहस कर देते और सारे वातावरण को इस तरह का बना देते इसमें आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भगवान ने महाभारत की तैयारी की, अर्जुन से कहा इस समय सामान्य बातों को छोड़ दे। कह भी रहा था स्वयं भुक्तम भिक्षम पिए लोके, मैं तो भीख मांग करके भी खा सकता हूँ, दुकान करके भी खा सकता हूँ, नौकरी करके भी खा सकता हूँ, पेट भर सकता हूँ, फिर मैं क्यों लड़ूंगा। नहीं, उन्होंने कहा यह आपत्तिकाल है, आपत्तिकाल के धर्म विशेष होते हैं। आपत्तिकाल का धर्म निभाने के लिए अर्जुन को तैयार किया गया और वो भगवान का कहना मान करके, अपनी मर्जी थी कि नहीं थी बात अलग है, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी थी कि नहीं थी भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी, और मर्जी में मिलाने के बाद में वो लड़ाई के मैदान में चला गया और गांडी चलाने लगा और सारे के सारे विरोधियों को मार गिराया, अंततः अपने राज्य का स्वामी हुआ और भगवान की भक्ति का ये अधिकारी हुआ। ये मैं आपत धर्म कहता हूँ कि पूजा पासना थी क्या, पूजा पासना अर्जुन की क्या क्या बच्चे आप बताइए, कोई अनुष्ठान जब तप ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि कुंडलनी कुछ की थी, कुछ नहीं की थी। भगवान की आज्ञा जैसा कि उन्होंने बताया कि इस समय करने लायक सबसे बड़ी साधना महाभारत की है, तो उसी में लग गया। लग जाने की वजह से वो साधना भगवान की बताई हुई साधना मनुष्यों की कराई हुई साधना की अपेक्षा लाखों गुणी श्रेष्ठ सिद्ध हुई, ऐसी ही दूसरों ने भी उपासना की। अच्छा बताइए हनुमान जी ने क्या उपासना की, हनुमान जी ने कोई अनुष्ठान किए थे, जप किए थे, तप किए थे, ध्यान धारणा की थी, कुंडलनी जगाई थी, कुछ भी नहीं किया, तब ऐसा बंद रखते खाली। तब भगवान से जब मुलाकात हुई और भगवान से जब उनका मिलना जुलना हुआ, तब उन्होंने पूछा मैं आपकी शरण में आ गया और मेरी आज्ञा बताइए। आज्ञा उनको बता दी कि सीता की खोज के लाइए और लंका को तबाह करने की कोशिश की, अनुष्ठान नहीं भगवान ने बता दिया। जब जब भी रामायण का पाठ, गीता का पाठ, नवान मंत्र का पाठ नहीं, कुछ ना कुछ नहीं। उन्होंने कहा इस समय आपत्ति धर्म ये है, सीता जिस मुसीबत में फंसी हुई हैं और देश के ऊपर जिस दैत्य संस्कृति ने अनाचार के बादल बादल शाटोप के तरीके से जमा कर दिए, उससे लड़ना पड़ेगा और उसको दूर करना पड़ेगा, आज की यह साधना यही है। हनुमान जी ने स्वीकार किया, उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया, कोई आग्रह नहीं किया हमको जब बताइए, ध्यान बताइए, पाठ बताइए, नहीं कुछ भी नहीं किया। ये तो उन लोगों के आग्रह रहते हैं जो कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, जिन्हें कोई मेहनत करने से लगाव नहीं है, सेवा के प्रति जिनके अंतकरण में कोई उत्साह और उमंग नहीं है, ऐसे आदमी खाली खाली बैठे रहें तो कुछ तो बताइए, कुछ तो बताना ही पड़ेगा, लकड़ी की माला ही घुमा चलिए, कुछ तो दीजिए बाबा, ऐसी आलस्य पड़े रहने की अपेक्षा तो माला घुमाना और राम का नाम लेना क्या बड़ा है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि उपासना का मतलब राम नाम लेना ही होता है, माला घुमानी होता है, हर काम में माला नहीं काम आती, माला भी कभी काम आती है लेकिन माला ही काम आती है, ऐसी बात नहीं। उपासना की दृष्टि से सामूहिक कर्तव्य सामूहिक जिम्मेदारियों का परिपालन करना बहुत जरूरी है, हनुमान जी ने वही किया था। जिस दिन से भगवान की शरण में आए उनकी आज्ञानुसार सारे जीवन भर साधना करते रहे, अपनी मर्जी की साधना की नहीं, अपनी मर्जी की साधना मालूम ही नहीं की। भगवान की साधना क्या थी, उन्होंने कहा पहले उनको ये हुक्म दिया था सीता को ढूंढ के लाइए, सीता को ढूंढ के हनुमान जी ले आए और उनको अंगूठी वापस कर दिए, कहा देखिए हम पता लगा लाए और जमा गए, काम नंबर एक। काम नंबर दो भगवान ने कहा तो फिर अब एक काम खत्म हो गया, दूसरा अध्याय साधना का सिखाएं, अब चलें राक्षसों से लड़ने के लिए युद्ध की तैयारी करें और युद्ध के लिए जो भी सरंजाम जुटाने हैं वो जुटा करके लाएं। हनुमान जी ने सारी तैयारियां कर दी, अपने मोहल्ले में गए और सारे ऋषि मंत्रों को उत्साह देकर के साथ ले आए, कहा कि चलिए आप भी चलिए, हम तो जा ही रहे हैं, आप भी चलिए। बहुत सारे बंदर और ऋषि उनके कहने के मुताबिक तैयार हो गए और हनुमान जी ने दौड़ लगाई, नलील को पकड़ के लाए जो कि अच्छे खासे इंजीनियर थे और बढ़िया वाला पुल बना सकते थे। ये कौन लाए थे, हनुमान जी लाए थे, अपने आप आए थे नहीं, अपने आप तो हरीश बंदर भी नहीं आए, अपने आप तो नलील भी नहीं आए थे, कोई अपने आप क्यों आने लगा, हनुमान जी थे। इन्होंने उनके साधन इकट्ठा करने में जुटाने में पूरी पूरी मेहनत की और लंका को परास्त करने के लिए जिन साधनों की ज़रूरत थी सारे के साधन ला करके जमा कर दिए और उन्होंने लड़ाई भी लड़ी और जो कुछ भी उस समय लड़ाई के समय में हो सकता था पेड़ उखाड़ने से लेके और राक्षसों को तबाह करने तक वो सब करते रहे। जब उनके भाई लक्ष्मण जी बीमार हो गए तो उनके लिए सुखायण वैद्य ने कहा पहाड़ उखाड़ के लाइए, पहाड़ उखाड़ भी लाते रहे, और जब जब आपका सिर जब 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 एक ही बात सीख लिया, दूसरी बात ही नहीं सीखी है कुछ, बस वो सबसे सुगम वाला, बैठे बैठे लकड़ी हिलाने वाला, सिर हिलाने वाला, जीभ की नोक हिलाने वाला, आपने तो इतना सस्ता ही उपासना समझ लिया। इतनी सस्ती उपासना होती है कहीं? इसमें त्याग न करना पड़ता हो, कष्ट न उठाना पड़ता हो, प्रसाद न करना पड़ता हो, साधना कहीं ऐसी भी होती है? ऐसी भी साधना होती है? इतनी सस्ती होती है साधना? इतनी सस्ती होती है? इतनी कीमती चीज़ें आप इतने डैम चीप कीमत में खरीदने की कोशिश करेंगे? मत कीजिए। वास्तविकता के नज़दीक आइए। भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान का कहना भी मानिए। शरणागति इसी का नाम, समर्पण इसी का नाम है। समर्पण और शरणागति इसी का नाम है कि हम भगवान का कहना माने, न कि भगवान को अपने कहने पर मजबूत करें। हमारी मनोकामना कीजिए, मनोकामना पूरी कीजिए। आप तो आप अपनी मर्जी पर भगवान को चलाएंगे, आपकी मर्जी पर चलेंगे भगवान। आप कौन है आखिर मुझे बताइए, अपना नाम तो बताइए। आप कौन है जो आपको ये ज़रूरत और ये जो हिम्मत होती है कि आप भगवान के ऊपर ये हुक्म चलाएं कि आप हमारी मनोकामना भी कर दीजिए, पूरी कर दीजिए। शरीर आपको मिल गया, मन आपको मिल गया, कुटुंब आपको मिल गया, कल आपको मिल गई, साधना आपको मिल गई, फिर भी आपकी ये ज़रूरत और ये हिमाकत कि आप भगवान से कहेंगे जो अपनी दैनिक ज़रूरत की चीज़ों को जो आप आसानी से पूरी कर सकते हैं वो न करेंगे और भगवान जी इसको भी करें। एक दिन कहिए ना भगवान जी से, टट्टी धोया कीजिए हमारी, कहिए ना भगवान जी से, कपड़े धोया कीजिए, ये कहिए ना भगवान जी से। मनोकामना में ये बात भी तो शामिल है, आपके ऊपर साथ करने लगे, आपकी योग्यता संपादन करेंगे आप, तो ये सब काम भगवान से करा लीजिए। खाना चबाने के लिए भगवान जी से कहिए आप खाना चबा करके हमारे मुंह में डाल जाया कीजिए। ऐसी क्या बात कहते हैं आप? आपको अपना प्रसाद जागृत करना पड़ेगा, भगवान का कहना मानना पड़ेगा। ग्वाल बालों की बात सुनी है ना आपने? ग्वाल बाल भगवान के परम प्रिय मित्र थे, युर्क के सहयोगी थे, सहचर थे, सखा थे। लेकिन ग्वाल बालों को बजाय उन्होंने रामायण पाठ, अखंड रामायण पाठ कराने की बजाय, अखंड कीर्तन कराने की बजाय उनसे कहा, आओ दोस्तों गोवर्धन पहाड़ उखाड़ेंगे, गोवर्धन पहाड़ को उठाएंगे। ग्वाल वालों ने उनका ही कहना माना, किसी ने भी ये नहीं कहा ईसा रामायण का अखंड पाठ कराइए हमको, तो और हमको तो सत्संग कराइए और हमको भंडारा कराइए और हमको कराइए, कुछ नहीं कहा। भगवान की जो तो भगवान जिसको समर्पण उसका समर्पण, उसकी आज्ञा उसकी आज्ञा, बस उनको जो हुक्म दिया गया पहाड़ उठाना चाहिए, बस उन्होंने पहाड़ में टेका लगाना और पत्थरों को जमा करना ऐसा ही करते समझा मानो कोई बड़ा भारी पुण्य कर रहे हैं और दान कर रहे हैं। हमें कहाँ अकल है जो हम ये बात का फैसला कर सकें कि हमको क्या करना चाहिए? क्या करने के लिए किसी महती शक्ति के साथ में आप संबंध जोड़िए और कठपुतली की तरीके से उसका कहना मान के चलिए, उसके पीछे पीछे चलिए। यही सही और यही मुनासिब तरीका है। सही भी यही है, मुनासिब यही है, लाभदायक भी यही है। इसीलिए युग संधि के समय में आपको जो काम करना है, बड़ा महत्वपूर्ण काम करना है, आज जन जन के मन को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। आदमी का मन, आदमी का चिंतन ऐसा भ्रष्ट हो गया है, कि उसके आचरणों को दुष्ट बनाने में कोई शहया शर्म नहीं आती। दुष्ट आचरण फौरन कर लगता है, क्योंकि चिंतन जिसका भ्रष्ट हो गया उसको आचरण को दुष्ट बनाने में क्या देर लगनी चाहिए। विचार आदमी के हैं ही नहीं, विचार सब अस्त व्यस्त हो गए। आज सबसे बड़ी आवश्यकता विचार क्रांति की है, जनमानस के परिष्कार की है, लोक मंगल के लिए जन जागरण की है। आप उस काम को करते हैं तब फिर आप ये समझिए कि आप युग संधि के समय पर युग साधना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर वो जानकारी प्राप्त हो गई तो फिर आपके मन में यही काम करना पड़ेगा जो आपको करना चाहिए। आप जिस परिवार के मेंबर हैं, ये परिवार बड़ी मुसीबत से और बड़ी मुश्किल से और बड़ी देखभाल से बनाया गया। इसको हमने ढूंढ ढूंढ करके, मोतियों को ढूंढ ढूंढ करके, कितने डुबकी लगा करके कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया है और आपको किस लिए इकट्ठा किया है और आपको किस लिए कल्प साधना में बुलाया है, ताकि आप भगवान के ऊपर इतना एहसान करने में समर्थ हो सकें कि आपका एहसान भगवान कभी नहीं भूलें, भगवान एहसान भूले नहीं। किसका? हनुमान। हनुमान को उसने अपना छवा कुटुंब का सदस्य बना लिया। आपने राम पंचायतन के चित्र देखे हैं ना, इसमें पांच तो वह हैं, चार भाई हैं और सीता जी हैं, पांच भाई, पांच राम पंचायतन हो जाता है। लेकिन आपने उसमें हर चित्र में हनुमान जी को शामिल देखा होगा। छठ में हनुमान जी थे, क्यों, क्या वजह थी? सिर्फ एक ही वजह थी कि उन्हें राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम, अपनी इच्छा से नहीं, अपना मन वैकुंठ को जाएंगे, अपनी मुक्ति कराएंगे, अपना फायदा कराएंगे, अपने चमत्कार देखेंगे, अपनी सिद्धि देखेंगे, अपना ये करेंगे। अपनापन ही जब हटा दिया तो अपनी मर्जी क्या रही? भगवान की मर्जी जो कुछ थी वही उन्होंने पूरी कर डाली, बस रामचंद्र जी के कुटुंबियों में से शुमार हो गए। आप ऐसे ही कीजिए, अपनी मर्जी की बात है मत रख। इस बाबा के पास, इस पंडा जी के पास, इस बाबा जी के पास, इस गुरु जी के पास कहीं झक मत मारिए। आपके भीतर बैठा हुआ, अंतकरण में बैठा हुआ भगवान मार्गदर्शन कर सकता है, और वो ऐसा सही मार्गदर्शन होगा जैसे कि अर्जुन के घोड़ों को चलाने में भगवान कृष्ण ने किया था। गांडीव चलाता था अर्जुन, लेकिन घोड़े को चलाने का, रास्ता सही बताने का और मोर्चे की जानकारी कराने का काम कृष्ण भगवान का था। आप ऐसे ही कर सकते हैं। आप ज़्यादा बहस में पड़ने की बजाय कि हमको ये करना है, ये करना है, ये स्कीम वो स्कीम, ये स्कीम वो स्कीम, 999 तरह की मत स्कीम बनाइए। आप एक ही स्कीम बनाइए कि हम किसी महती सत्ता की छाया में बैठेंगे, क्या कहना मानेंगे? बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं, उसी में लाभ है। बंदर की कहानी सुनिए। बंदर का बच्चा था, बस वो बाप मना कर रहा था, अरे बाबा ये बड़ी लकड़ी चीर रहे हैं तो इसे दूर रहे, मानता ही नहीं, मानता ही नहीं। एक दिन जो दो लकड़ियों को चीरने के बीच में फाना लगा हुआ था, बंदर ने उसको उखाड़ डाला तो हाथ दब गया। बस दूसरे दिन तक चींची करता रहा, जब तक उस घरवाली ने आई और बड़ी मेहनत से उसको निकाला नहीं, हाथ एक घायल ही हो गया था, टूट ही गया था, बर्बाद ही हो गया हनुमान जी का, उसका बंदर का। आप भी इसी तरीके से करेंगे, अपनी मर्जी अपनी मर्जी अपनी मर्जी अपनी मर्जी अपनी मर्जी अपनी मर्जी कहाँ तक करेंगे? हमको ये साधना बताइए, हमको ये बीज मंत्र बताइए, आप मत पूछिए। हमने ऐसा नहीं पूछा है, हमारे जीवन की साधना के बारे में हमने कभी अपने बॉस से ये नहीं पूछा, आप हमको ये बता दीजिए, ये कर दीजिए, इसका मंत्र बताइए, इसका तंत्र बताइए। अपनी मर्जी ख़त्म कर दी, उससे कहा बताइए, हुक्म दीजिए, उससे जो कुछ भी कहा, हमने बिना आँखें मूंद करके उसके रास्ते पर चलते रहे। और हमको ये विश्वास था कि हमको रास्ता दिखाने वाली सत्ता सही है और हमारी अकल से उसकी अकल ज़्यादा है। बस यही होता रहा, चलते हुए हम कहाँ पहुँचे आप देखते हैं ना। आपके लिए भी यही रास्ता है, आपके लिए भी यही रास्ता है। आपको समय की मांग, समय की मांग आपके सामने भी है, और वह समय की मांग इस तरीके से है जिसको आपको पूरा करना ही चाहिए। रामचंद्र जी ने जब जन्म लिया था तब उनके साथ साथ में देवता आए थे। देवताओं ने कहा मनुष्य बड़े चालाक होते हैं, मनुष्यों में त्याग का मादा कहाँ, परोपकार का मादा कहाँ, सेवा का मादा कहाँ, मनुष्य तो केवल स्वार्थ की बात सोचते रहते हैं। आप जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए स्वार्थियों से सहयोग से काम थोड़ी काम चलेगा, परमार्थियों के दल चाहिए। परमार्थियों के दल कहाँ से आएंगे? आजकल संसार में है भी नहीं। चलिए हम आपके साथ चलते हैं। बस सब लोग आए थे, और कोई हनुमान जी, किसी के शंकर जी हनुमान जी के रूप में आ गए थे, कौन कौन किसके रूप में आ गया था, बंदरों के रूप में देवता आ गए थे। उन्होंने देवताओं ने देवताओं की भूमिका निभाई। आज आप भी भगवान जो अवतार ले रहे हैं प्रज्ञावतार, उसके साथ साथ में उन्हीं देवताओं के तरीके से हैं जिनको के भगवान के काम में हाथ बटाना, हिस्सा बटाना है, और भगवान के श्रेय में भी हिस्सा बटाना है, आप उनकी प्रसन्नता में भी हिस्सा बटाना है, उनकी शक्तियों में भी हिस्सा बटाना है। ये बटाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी कीमत चुका दें और भगवान की मर्जी पर इस समय चलना स्वीकार कर लें। समाज के नए निर्माण का युग है, समाज को नए ढांचे में ढाला जाना है। पुराना ढांचा इतना गली हो गया है कि अब गलाने और ढालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इस गलाई में आप हिस्सा बटाइए, इस ढलाई में आप हिस्सा बटाइए, अपने समय को लेके आइए, शक्ति को लेके आइए, मन को लेके आइए, भावना विचारों को लेकर के आइए, और उस काम में जुट जाइए। जो आज का भगवान, इस युग का भगवान, जिसको हम प्रज्ञावतार कहते हैं, प्रज्ञावतार कहते हैं, इस प्रज्ञावतार की मर्जी क्या है? ज़रा आप आँख खोल के देखिए और कान खोल के सुनिए। अगर आप कान खोल के देखेंगे और आँख खोल के सुनेंगे तो आपको कुछ ऐसी बात जानकारी मिलेगी जैसी कि प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत आपको बार बार बताई जा रही है। ये भगवान की प्रेरणा है, ये भगवान की दिशाधारा है। देवताओं ने अर्जुन उनके कृष्ण भगवान के साथ भी किया था। कृष्ण भगवान ने देखा कि जब जा रहे हैं तो उनका सहयोग कौन करेगा, अकेले कैसे क्या कर पाएंगे। देवता ने कहा तो भगवान हमको भी आज्ञा चलने दीजिए, हम भी आपके साथ साथ चलेंगे और आपके काम में हाथ बटाएंगे। भगवान ने हाँ कह दिया, बस सारे देवताओं ने जन्म लेकर के उनके साथ साथ सहयोग किया। पांडव कौन थे आपको मालूम है? कथा पढ़ी या नहीं? नहीं पढ़ी। अच्छा, पांडव जो थे पांच देवताओं के बेटे थे। कर्ण जो था वो भी देवता का बेटा था। कुंती के गर्भ से
देवता पैदा हुए थे और देवता सिर्फ इसलिए पैदा हुए थे कि भगवान श्री कृष्ण के काम आए। और क्या किया बताइए, धर्मराज ने क्या किया, अर्जुन ने कौन सा बड़ा काम कर लिया, भीम ने क्या 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 किया, नकुल सहदेव किस काम में लगे थे, सब सबने मिलजुल करके सिर्फ एक ही काम किया कि भगवान का गोवर्धन उठाएं और भगवान के काम आए। ये कैसे उत्पन्न हो गया, चूँकि देवता थे पहले जन्म के, देवताओं की भावना इसी तरह की होती है, स्वार्थियों की भावना, चालाकियों की चालाकों की भावना, मोहग्रस्तों की भावना, पाप की कीचड़ में डूबे हुए लोगों की भावना तो ये सकती हैं, उनको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, हमारी औलाद को बड़ा संपन्न होना चाहिए, बस बस इससे आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन भावनाएं उनकी वही होती हैं देवताओं की, कि हमको परोपकार करना चाहिए, भगवान की आवश्यकताओं को समझ करके उसमें योगदान देना चाहिए। अर्जुन ने समेत सब पांडवों ने ये किया, सारी जिंदगी भर देवता थे ना। आप भी ठीक उसी तरह के हैं, आप अपने आप को देवता माने तो कोई हर्ज नहीं। आप ये प्रज्ञावतार का युग है, भगवान की नई शक्तियों ने जन्म लिया है, ज्ञान की गंगा के रूप में, ज्ञान की गंगा के रूप में इसी समय उनका जन्म हुआ है। और वो बराबर ये कोशिश कर रही हैं कि लोगों के ख्यालात बदल दें और नए विचारों की स्थापना हो, कि प्रज्ञा अभियान उसी का है, ये योजना भगवान की है और भगवान ही वास्तव में इसका संचालन करता है, व्यक्ति विशेष करता है। इससे क्या हुआ, हवाई जहाज तो पेट्रोल से उड़ता है, ठीक है, ड्राइवर कोई उड़ाता थोड़ी है, मशीन घुमा देता है, ठीक है, हम हैं दूसरे और लोग हैं, ये तो कोई मशीन घुमा देते होंगे, ताकत कहाँ से आई इतनी, हवाई जहाज तो करोड़ रुपये का आता है, 1 करोड़ रुपये का हवाई जहाज पैदा करने की शक्ति किसी और में है। आप उसी तरीके से कीजिए, आप इस समय अपनी सारी विचारों को, सारी इच्छाओं को सिर्फ इस काम में लगा दीजिए कि हमको समय की मांग पूरी करनी है, युग की भूमिका निभानी है। युग की भूमिका निभाने के लिए आप आगे आगे बढ़ें तो आपको पूरा श्रेय मिले, जागृत आत्माएँ हमेशा आगे आगे बढ़ें। उन्होंने इंतजार नहीं देखा है कि दूसरे करेंगे तो हम करेंगे, हिमालय पर सबसे पहले जो ऊंचा शिखर होता है उस पर धूप चमकती है, आप भी अपने ऊपर धूप चमकाइए सबसे पहले, झंडा आगे आगे चलता है, दूर से दिखाई पड़ता है, आप आगे आगे चलिए और दूसरों को रास्ता बताइए। लड़ाई में बैंड बाजे बिगुल बाजे आगे आगे चलते हैं, आप बैंड बाजे वाले बनिए और बिगुल बजाइए ताकि सारी सेना में हिम्मत पैदा हो सके। आपको कुछ ऐसे शानदार काम करने हैं इस समय में, आप जागृत आत्मा हैं, जागृत आत्माओं को, युग प्रहरियों को युग को देखना पड़ेगा, युग की ज़रूरतें क्या हैं, युग की ज़रूरतें क्या हैं, आपकी इच्छा क्या है। अरे बाबा एक कोने पर रखिए आपकी इच्छा क्या है, हम कहते हैं अपनी इच्छा को एक कोने में रखिए, भगवान की इच्छा क्या है, समय की मांग क्या है, प्रज्ञा अवतार की मांग क्या है। आप कान खोल के श्री को सुनिए और सुनने के बाद में पूरी हिम्मत के साथ में, पूरी वफादारी और जिम्मेदारी के साथ में भगवान के काम करने के लिए कटिबद्ध हो जाइए। आज की युग साधना यही बताती है हमको, लोक मानस का परिष्कार करना, इन जागरण करना है, इन उद्देश्यों के लिए अगर आप अपने आप को समर्पित कर दें, इनकी पूर्ति के लिए जीवन भर लगे रहें, समझना चाहिए आपको सही रास्ता मिल गया। ये तीर्थ आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन कुछ आपको भी देना है, आप भी युग चेतना की सहायता करेंगे तो आप धन्य होकर के रहेंगे, जैसे कि प्राचीन काल के भगवान के सहयोगी धन्य होकर के रहे। समाप्त।